والله خلق كل دابة من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے سارے جانداروں کو پانی سے پیدا کیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر جاندار کی بیس جو ہے نا وہ پانی ہے. سمجھ لیں زندگی کا کوڈ ہے. سورہ انبیاء میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. تو پانی جو ہے یہ ایک بیسک ایلیمنٹ جو ہے نا انسانوں کے اندر اور ہر جاندار کے اندر وہ پانی ہے. اب زیادہ انسانوں کے اندر بھی پانی ہوتا ہے لیکن پھر بھی دیکھیں اسی لیے پانی کی کمی ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے, انسان مر سکتا ہے. تو اب اس ساری جانداروں کو نا پانی سے پیدا کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ, تو ان میں سے کوئی ہیں جو چلتے ہیں اپنے بطن پہ اپنے پیٹ پہ. اور مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ, اور دو کوئی دو پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے انسان. پیٹ پہ کیا ہے, کیڑے مکوڑے سانپ وغیرہ آپ دیکھیں سارے پیٹ پہ چلتے ہیں, اور دو ٹانگوں پہ تو انسان ہی چلتے. اور پھر کیا ہے پرندے بھی چلتے. اور مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ, پھر کچھ ہے جو چار پہ چلتے ہیں. وہ تو آپ بہت سارے جانور دیکھتے ہیں جو چار پاؤں پہ ہی چلتے ہیں, بکری ہو گئی, گائے ہو گئی, شیر, چیتے, جتنے سارے یہ سارے چار پہ ہی چلتے ہیں. یہ لوگ کو پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ, ماں یہ شاہ جو وہ چاہتا ہے اس کی مرضی, چاہے چار پیروں پہ چلا ہے, چاہے دو پہ چلا ہے, چاہے منہ کے بل چلا دے, کیونکہ قیامت کے دن لوگ منہ کے بل بھی چلتے ہوں گے. جو دنیا میں تم اندھے رہے نا, اندھے بن کے رہے نا, تو اس دن اوندھے منہ چلایا جائے گا, سر نیچے ہوگا اور پیر اوپر ہوں گے. اللہ اکبر. تو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ساری ڈیزائننگ جو ہے نا یہ اللہ تعالی نے کی ہے, جس کو جس پہ بھی چلا دے. اور ایک اور اس کے اندر بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے. بعد میں چینجز آتے ہیں, اسی پانی کا ہی ایلیمنٹ انسان میں بھی ہے, ایک بندر میں بھی ہے, ایک شیر میں بھی ہے, ایک بکری میں بھی ہے, ایک پرندے میں بھی ہے. سب بعد میں جا کے چینجز آئے, اصل ایک ہے, پہلا پانی ایک ہے. اور اس ایک سے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں بنا دی. تو پھر انسان کو ایسے کریٹر کے آگے جھک نہیں جانا چاہیے, ایسے خالق کے آگے. یہ کیا تیری قدرت کے کارنامے ہیں, پورا زو آپ کو دکھا دیا گیا. اگر پیٹ پہ چلنے والے بھی ہیں, چار ٹانگوں پہ چلنے والے بھی ہیں, دو ٹانگوں پہ چلنے والے بھی ہیں, کسی کے پاس نہ ہی ہاتھ پیر ہوتے تو پھر وہ بھی پیٹ کے بھر ہی چلے گا. تو یہ سب دکھا دیا. اچھا پھر ایک بات بڑی خوبصورت اس سے یہ بھی سوچے کہ کچھ ہے جو پیٹ پہ چلتے ہیں نا, پیٹ کے سہارے زندگی گزارتے ہیں, پیٹ کے بل پہ, پیٹ کے ہی مسئلے ہیں ان کے, اور اسی پیٹ کی پوجا کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں, صرف پیٹ کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے. سارا وقت ان کو اس پیٹ کی فکر لگی رہتی ہے, کھانا کیا, پینا کیا, کھانا کیا, آج کیا بنے گا, کل کیا بنے گا, پرسوں کیا بنے گا, اس کی پلاننگ. اور اسی کے لیے کماتے ہیں, اسی کے لیے جیتے ہیں, اسی کے لیے مرتے ہیں, پیٹ کے پیچھے بھاگنے والے. یہ کیسے ہوتے ہیں, یہ نیچے کو ہی رہ جاتے ہیں. دیکھیں نا آپ, سانپ ہے, یہ کیڑے مکوڑے نیچے ہی رہ جاتے ہیں, زمین کے ساتھ ہی چپکے میں, زمین کے ساتھ ہیں, پیٹ پہ چل رہے ہیں, زمین کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں. یعنی ان کے سارا کچھ زمین سے چپکا ہوا ہے, اسی کے پیچھے اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں خواہشات کے. اور یہ جتنے ہیں جیسے سانپ ہے, کیڑے مکوڑے ہیں, ان سے شر ہی پیدا ہوتا ہے, پھر غیر تو نہیں آتی. تو انسان بھی جو پیٹ کے بل پہ ہی زندگی گزارتا ہے وہ پھر خیر کا کیسے باعث بنے گا کسی کے لیے. اور پھر وہ جو ہیں جو چار کے بل چلتے ہیں, ان کی بھی کیفیت دیکھیں, ان کا بھی رخ زمین کی طرف ہی ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں بکری وغیرہ کو, سر نیچے کو ہی ہوتا ہے, نیچے کی طرف ہی دھیان ہے ان کا, خواہشات کی زمین کے اوپر چلنا. تھوڑا سا زمین سے اوپر اٹھتے ہیں, پیٹ پہ چلنے والوں سے تو تھوڑے اوپر ہیں, لیکن ابھی بھی نیچے کی طرف کوئی ہے ان کا دھیان, خواہشات ان کو نیچے ہی جھکائے دیتی ہیں. उनकी अकल उनको नीचे ही की तरफ लेकर दिखाती है हर चीज। और फिर कुछ हैं जो दो पांव पे चलते हैं, जो बुलंद हो जाते हैं जमीन से, ऊपर उठ जाते हैं, वो ऊपर को देख सकते हैं। इसमें अकल है ना, शऊर है। इसमें अपनी अकल इस्तेमाल करके वो इस जमीन के ही बंदे बन के नहीं रह रहे, जमीन की तरफ कोई नहीं इनका रुख, ये बुलंद है, अल्लाह ने इसको ऐसा बनाया। अब देखें ये मखलूकात सब सबक दे रही है इंसान को, ये सब सिखा रही है इंसान को कुछ। इनके अंदर एक मैसेज है, इनके चलने में भी एक मैसेज है। और अल्लाह ने इंसान को दो पांव पे चलाया ताकि तुम इस तरह से ना हो कि जमीन के ही बंदे बन के रहो, पेड़ की पूजा में ही लगे रहो। तुम इससे अबव हो, इससे ऊपर उठो। उसकी चाल, उसका चलना ही बताता है, उसका दो पैरों पे चलना ही इस चीज को की अलामत बन जाता है कि ये सिर्फ जमीन का बंदा नहीं। और फिर भी कई इंसान ऐसे होते हैं कि वो इससे ये मैसेज नहीं लेते और वो अपने पेट के बल पे सारी जिंदगी गुजार देते हैं, या ख्वाहिशात के बल पे, चार टांगों वालों की तरह। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला चाहे तो जिसको जिस पे भी चलाए, हर चीज पर कादिर है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लकद अंजलना आयातिम मुबय्यिनात, और अलबत्ता तहकीक हमने नाजिल की आयात जो बिल्कुल रोशन है। इतनी रोशन है ये आयतें कि कोई कह नहीं सकता कि मुझे तो नहीं समझ आई, मुझे तो बड़ी कंफ्यूजन है, मुझे तो समझ ही नहीं आता अल्लाह ताला हमसे चाहता क्या है। नहीं, सिराते मुस्तकीम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, ये आयात क्लियर है, ये कुरान क्लियर है, रोशन। लेकिन अगर इंसान की अपनी आंखों की रोशनी ही खत्म हो जाए तो मुझे बताएं रास्ता कितना भी रोशन हो दिखाई नहीं देता। ऐसा ही है ना, देखिए ना, एक बंदा अगर इतनी रोशनी हो, दिन चढ़ा हुआ है, रास्ता बिल्कुल क्लियर है, सड़क साफ है, लेकिन वो खुद ही अंधा हो जाए तो उसको कहाँ से रास्ता मिलेगा, वो क्या सीधा चल सकेगा। अल्लाह ताला ने तो रोशन आयात नाजिल कर दी है, लेकिन वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिराते मुस्तकीम, अल्लाह जिसको चाहे उसको रहनुमाई दे देता है सिराते मुस्तकीम की। तो अब कोई कह सकता है अल्लाह ही नहीं चाहता हमारे लिए? नहीं कह सकता, इसलिए कि अल्लाह ताला की चाहत उसकी हिकमत के ऊपर मबनी है, और उसकी चाहत उसी के लिए होती है जिसमें खुद तलब होती है। आपको कोई सिराते मुस्तकीम में चलाना चाहे और आप खुद ही इतने ज्यादा इससे रिलक्टेंट हैं, और इतने ज्यादा आप इससे जान छुड़ाते हैं, और आपका दिल ही नहीं करता, और आप भागते जाते हैं, सिर्फ राहे फरार जाते हैं, तो अल्लाह ताला भी नहीं चलाता, फिर अल्लाह भी नहीं हिदायत देता। आगे जैसे कि मैंने आपको बयान किया कि वो आयात आ रही हैं जिसमें अब आपको पता चलेगा कि क्या फर्क है एक मुनाफिक में और एक मोमिन। अल्लाह ताला ने आयात मुबय्यिनात तो सबके लिए नाजिल की, लेकिन जिनकी अपनी अंदर की रोशनी ही मद्धम हो चुकी हो या मिट चुकी हो, तो फिर उनको जितना मर्जी आप बता दें, चला दें, के लिए कोशिश करें, कुछ भी करें, कुछ फायदा नहीं है। तो यहां पे देखिए फरमाया, वयकुलून आमन्ना बिल्लाहि वबिर रसूल, और वो कहते हैं, कौन कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं, अभी आप इस चीज को ना सोचें कि मुनाफिक हैं, ये उनकी बात हो रही है, लेकिन बस एक एक सोचें कि ये एक कैसा रवैया है, आप पहले इस रवैये को देखिए। अब वो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत मुबारकबादी की बात है ना, इसका मतलब है कि देखिए कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान रहे, रसूल पर ईमान रहे, वह अतना, और हमने इताअत भी की, हम ईमान लाए और हमने इताअत भी की, ये तो हम भी कहते हैं। हम ईमान लेकर आए, दिल से हम ईमान लाए हैं जी। हम अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, हम उसके रसूल पर भी ईमान रखते हैं, हम इताअत भी करने वाले हैं। हमारी तो जान कुर्बान हो जाए इस दीन के ऊपर और अल्लाह रसूल के नाम के ऊपर, हम जाने देने को तैयार। हम फला कितना मर्जी बातें करा लो, ठीक है। जान से कम चीज तो हम देने को तैयार ही नहीं ना होते। जान तो पहले ही हमने हाथों पे रखी होती कि बस जान देने को तैयार है। नारे हमारे देख लेना कैसे हैं। तो जान से छोटी बात तो हम करते ही नहीं ना। हालांकि जान मांगी नहीं गई, और चीजें मांगी गई वो तक देने को तैयार नहीं। जान का मांगा जाना तो बाद की बात है, वो तो अगर कभी मांगी जाए तो पता नहीं हमारे क्या हाल हो। अल्लाह रहम करे कि फिर तो हमारे बिल्कुल ही कच्चे छठे खुल जाएंगे, बिल्कुल समझ आ जाएगी सबको कितने पानी में। तो वो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर, हम ईमान लाए रसूल पर और इताअत की हमने, फिर क्या होता है, सुम मैं तवल्ला फरीक मिनहुम मिन बादी ज़ालिका। फिर एक फरीक उनमें से मुंह मोड़ लेता है। किस वक्त मुंह मोड़ लेता है? इसके बाद, किसके बाद? जब उनको काम करने को कहा जाता है, इताअत करने को वाकई कहा जाता है, अमल करने को कहा जाता है, तो फिर तो कुछ और ही निकलता है। फिर वो मुंह मोड़ जाते हैं। यानी बातें कितनी है, करना कराना कुछ नहीं। बस जूं ही करने का वक्त आया, फिर मजबूरियों के बहाने, फिर एक्सक्यूजेस, फिर पता नहीं क्या क्या बातें, फिर पता नहीं कितने काम याद आ जाते हैं, फिर कितने तरह के मसले मसाइल आ जाते हैं। वमा उलाइका बिल मुमिनीन, होना तो ये चाहिए था कि हम शुरू में हमने पढ़ा तो हमने सोचा कि ये तो बिल्कुल मोमिन है क्योंकि ये तो ईमान लाते हैं अल्लाह पर रसूल पर, लेकिन क्या है, अल्लाह ताला ने डिक्लेयर कर दिया ये तो मोमिन ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं है मोमिन? इसलिए कि इनकी सिर्फ जुबानी बातें हैं और बातों के अलावा कुछ नहीं। और ईमान जो होता है सिर्फ मुंह के बोलों का नाम नहीं होता, ईमान में अमल भी शामिल है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सारी उम्मत में जन्नत में दाखिल होगी, सारी उम्मत मेरी, सिवाय उनके जिन्होंने इनकार कर दिया। तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह इनकार किसने कर दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जिन्होंने मेरी नाफरमानी की, मेरी बात का इनकार कर दिया। अल्लाह हु अकबर। तो ये आयात का एक कॉन्टेक्स्ट भी बयान किया जाता है, वो वाक्या भी आपको बता दूं तफसीर तबरी में है कि मुनाफिकीन में से एक आदमी था बिशर नाम का, उसके दरमियान और एक यहूदी के दरमियान एक जमीन के मुतल्लिक झगड़ा हो गया। यहूदी ने उसको कहा कि चलो तुम्हारे रसूल के पास ही चल के फैसला करा लेते हैं, मगर बिशर मुनाफिक नाहक पर था और वो ये जानता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर मुकदमा गया तो आप तो हक के मुताबिक फैसला करेंगे और मैं हार जाऊंगा। तो उसने इनकार कर दिया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय काब बिन अशरफ जो यहूदियों का सरदार था उसके पास मुकदमा ले जाने को कहा। उस पर यह आयात नाजिल हो गई। अब आप देख लें कि ये कैसे लोग हैं कि, और आगे भी इनकी बात आ रही है, एक ऐसे लोग हैं कहते हैं कि हम ईमान लाए, हमारा ईमान तो ऐसा है, हम तो ये बुलंदो बांग इसके दावे, मगर उसके बाद खुद ही मुंह फेर के चल पड़ते हैं। और उनका मुंह फेरना किस चीज से? इताअत से। क्योंकि ईमान तस्दीक बिल कल्ब भी है, इकरार बिल लिसान भी है और अमल बिल जवारे भी है। ईमान ये तीनों चीजों का है कि दिल भी तस्दीक करे, जुबान से भी करार करना और अपने आजा से अमल भी करके दिखाना, वरना ईमान मुकम्मल नहीं। आज हमारे सामने जब अल्लाह के कुरान से कोई बात आ जाती है या कोई हदीस की बात आ जाती है तो हम भी मान लेते हैं, या सिर्फ हम बोलते ही रहते हैं हम तो बड़े इताअत गुजार, हमने तो ये। अब आप देखें ये आयात गुजरी पर्दे की, हम कहने को हम अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, रसूल पर ईमान रखने वाले हैं और बोलते भी बहुत हैं और बड़े इताअत गुजार भी हैं। मैं तो नमाज भी पढ़ लेती हूँ, मैं तो ये भी कर लेती हूँ, मैं तो वो भी कर लेती हूँ, सदका भी करती हूँ, फलां भी करती हूँ, उसके बाद क्या होता है? मुंह मोड़ नहीं जाते हैं अल्लाह ताला के अहकाम से, साफ वाजी आयात है सामने है लिखी। उसके बाद क्या है, रवैया क्या होता है अमल का जब वक्त आता है। ठीक है, एक वक्त इंसान को पता नहीं होता, फिर भी एक बात शायद उसके लिए ये उजर बन जाए कि मैं मुझे पता ही नहीं था। एक बंदे को पता भी चल गया फिर भी वो अपनी लाइफ को इस्लाम के मुताबिक नहीं ढालता, और इन अहकामात को तो ये समझता है कि जैसे कोई बात ही नहीं है, जैसे अल्लाह का हुक्म ना हुआ, जैसे ऐसे समझता है जैसे नाक पे बैठी मक्खी के ऐसे उड़ा दिया। तो सुना और बस ठीक है, सुन लिया बस सही है, इस कान से सुना उधर से निकाल दिया। आप खुद सोचिए कि किसी के हस्बैंड अगर उसके साथ बड़ी मोहब्बत के दावे करते हैं, दिन में 100 दफा आई लव यू कहें, और उसके बाद उसी से बेवफाई करें और कहीं और जाके इन्वॉल्व हो जाए, तो वो क्या कहेगी कि तो नहीं तुम मेरे सारा दिन आई लव यू कहते रहते तो तुम बड़े अच्छे हो। वो कहेगी इसका क्या फायदा, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसे दावे हैं। क्या उस बंदे के दावों की कोई हकीकत रहेगी, क्या वो औरत उसके दावों को कबूल करेगी, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा, क्या ऐसी कसमों को कबूल करेगी, नहीं, क्योंकि उसका अमल इसके बिल्कुल बरखिलाफ है। और जिंदगी के हर शोबे में ये देख रहे हैं, आप किसी जगह नौकरी लेते हैं, आप कहते हैं मैं बहुत अच्छा आपका मतलब काम करना में बहुत अच्छा कारिंदा हूं, बहुत अच्छा काम करता हूं, बहुत अच्छा, लेकिन उसके बाद आप ऑफिस ही ना जाए, काम ही ना करें, तो क्या होगा। अल्लाह ताला से वफादारी का, उसके ऊपर ईमान की बातें, ये सब चीजें आप मुंह से अगर बोलते हैं और ये कहते भी हैं कि हम ईमान लेकर आए और हम इताअत भी हमने कबूल कर ली है, हमने मान लिया, लेकिन जिस वक्त आपके सामने अल्लाह का कोई हुक्म आए तो उस वक्त आप ऐसे नजरें बचा के दूसरी तरफ हो जाएं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ सुना ही नहीं, तो क्या आपके दावे कबूल किए जाएंगे। यहां से पता चलता है कि ऐसे लोग तो मोमिन है ही नहीं, वो अपने आप को काउंट ना करें मोमिनों की कैटेगरी में, और जन्नत तो मोमिनों के लिए है, जुबानी दावे करने वालों के लिए नहीं। दावे तो करना बहुत आसान है, जुबान चलाना कौन सा मुश्किल है। अब मैं आपको आगे पूरा 3-3 घंटे लेक्चर देती रहूं, यार अगर मैंने अमल ना किया ना तो मेरे लेक्चर देने मेरे कोई काम नहीं आएंगे, मेरे दर्स देने, ये करना। अल्लाह ताला ने ये नहीं देखना किसको बातें करनी बहुत अच्छी आती थी, अल्लाह ताला ने देखना है कि मेरे लिए मेरे दीन के ऊपर चल के कैसे दिखाया, मेरे हुक्मों का क्या अहमियत दी इसने, या कोई अहमियत ही नहीं है अल्लाह की बात की। وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ। अब ये उन्हीं की बात चल रही है, एंड में तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये मुनाफिक है, लेकिन अभी आप इसलिए नहीं, मैं कह रही कि जब आप कहूंगी ना मुनाफिक 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 कैसे करते थे, मुनाफिक कैसे करते थे, तो आपके जहन में बस वो मदीना की सोसाइटी आ जाती है जिसमें कुछ मुनाफिक लोग थे जो ऐसे करते थे, और हम तो बिल्कुल साफ सुथरे बिल्कुल पाक साफ बैठे हुए, हमारे हम तो पक्के ही मोमिन हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुनाफिक हो सकते थे ना, जो उनकी उनकी पर्सनालिटी मौजूद होने के बावजूद मुनाफ़कत का मर्ज रख सकते थे, जो उनके जुबान से कलामे पाक सुन के भी निफाक की बीमारी में मुबतला हो सकते थे, तो आज भी हो सकते हैं। तो वो जब बुलाए जाते हैं ना तरफ अल्लाह की और रसूल की, किस बात के लिए, लियाहकुमा बैना, ताकि वो फैसला करे। कौन फैसला करे, यहाँ पे ड्यूल का नहीं है, बुलाए तो जाते हैं अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, लेकिन लियाहकुमा वाहिद है, किसकी तरफ इशारा है, अल्लाह की तरफ या रसूल की तरफ। ये पीछे फौरन पीछे देखें किसकी बात आ रही, रसूल की, क्योंकि रसूल ही है ना जो उनके अंदर मौजूद है, जो उनके दरमियान फैसला करेंगे, अल्लाह ताला तो नहीं आएगा फैसला करने। तो जब उनको अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाया जाता है, यानी कुरान की तरफ, हदीस की तरफ, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके अंदर फैसला करते थे, याकुमा बैनहुम, कि आओ अल्लाह के रसूल तुम्हारे दरमियान फैसला करें, तो इजा फरीकुम मिनहुम मुअरिदून, तो एक फरीक जो है ना उनमें से एराज बरतने लगता है। एराज क्या होता है? तवल्ला भी था, मुंह मोड़ना। मुंह मोड़ना फिजिकली होता है कि पूरा पूरा यानी गायब ही हो जाना। एराज जो है ना, दिल का एराज होता है, ये बिल्कुल इग्नोर ही कर देना कि जैसे बात ही नहीं सुनी। कभी कभी हम ऐसे भी करते हैं ना, जैसे बात ही नहीं सुनी, हमें तो पता ही नहीं चला, सुन सब लिया होता है। अल्लाह अकबर। अब आप देख लें कि जब मोमिन का रवैया तो क्या होना चाहिए कि जब अल्लाह रसूल की तरफ बुलाया जाए कि वो फैसला करें, तो उसको ये होना चाहिए कि कुरान मेरा फैसला करें, रसूल मेरा फैसला करें। लेकिन इनका तर्ज अमल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये अल्लाह रसूल से फैसला नहीं कराना चाहते। आपको जो मैंने वाकया बताया, इससे ये भी आपको पता चल गया होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये देख के नहीं फैसला करते थे, ये तो मुसलमान है ना, कहने को तो मुसलमान ही थे ना, इस्लाम लाए हुए थे, कलमा पढ़ते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, तो ये तो मुसलमान है, लिहाजा मुझे तो इसके ही फेवर में फैसला देना। जैसे हम देख लें, अगर एक हमारे पास एक काफिर आए और एक मुसलमान है, तो हम कहीं अपना मुसलमान है ना, इसी को मैं इसी के तरफ फैसला कर दूं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक की बात करते थे, तो चाहे वो काफिर है दूसरी तरफ, लेकिन अगर काफिर के हक में फैसला जा रहा है तो उसके हक में दे देंगे। तो एक तो ये अपनी चीज को दुरुस्त करें, जो बहुत जगह पे हमें कहते थे ना, अपने मुसलमान है ना, तो चलो ठीक है, अब वो स्याह करें सफेद करें वो सारे ही अच्छे हैं। नहीं, अगर वो गलत कर रहा है तो वो भी गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो कभी दूध धुला उतरा है क्योंकि उसने कलमा पढ़ लिया। मुनाफिक भी तो कोई हो सकता है। तो सूरह निसा में अल्लाह तआला ने फरमाया था ना, अल्लाह तआला इल्लज़ीना यसमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला वमा उन्ज़िला मिन क़बलिक, क्या तुमने उनको नहीं देखा जो ये गुमान करते हैं कि हम ईमान लाए उस पर जो आपकी तरफ नाजिल हुआ और उस पर जो आपसे पहले नाजिल हुआ, लेकिन वो फैसले अपने कहां से कराते हैं? तागूत से, तागूत से फैसले कराते हैं, अल्लाह के अलावा औरों से फैसले कराते हैं, अल्लाह रसूल की तरफ नहीं आना चाहते फैसलों के लिए। अब चले जिंदगी के दूसरे फैसलों को, तो उस वक्त तो आम जिंदगी के फैसले भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही कराते थे, ठीक है, लेकिन चले आज तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, तो अब तो दीन के फैसले ही हो सकते हैं ना, जो नबी अलैहिस्सलाम करें। कैसे करेंगे वो? क्योंकि आज भी कुरान वही है, हदीस वही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम जाते किस तरह है? कि यानी कुरान और हदीस से रुजू करते हैं। तो अब आप ये बताइए कि जब दीन के बारे में कोई बहस मुहासा हो जाए, कहीं कोई झगड़ा हो जाए, कहीं कोई इख्तलाफ हो जाए, तो हम क्या वाकई कुरान और हदीस की तरफ जाते हैं, या हमारे पास कोई और है? क्या आपको कोई कहे कि हदीस ये कहती है और आप कहें, लेकिन आप ये बता दें कि हमारे इमाम ने क्या कहा है, हमारे फिक्का में क्या है, ये हमें नहीं इस चीज से कि हदीस में क्या है। अगर हमारे इमाम ने इस तरह समझा होगा तो फिर हम भी समझ लेंगे, और इमाम ने ही नहीं समझा तो हमें नहीं कोई परवाह। और हमारे तो जो है साइंस तो ये कहती है, और हमारे तो फलां फिलोसोफर ने ये कहा है, और हमारे तो मस्जिद के इमाम साहब ने ये कहा। तो ये चीज आप देख लें कि मोमिन का ये तरीका है कार नहीं होता। जब उसके सामने कुरान हदीस आ जाती है ना, तो वो अपने मुंह को बंद कर लेता, ठीक है, वो ये नहीं कहता कि नहीं मैंने ये नहीं मानना। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में तो इतनी बड़ी बात फरमा दी, फला व रब्बी कला युमिनूना हत्ता युक्किमू कफी मा शजरा बैना, कि ये मोमिन हो ही नहीं सकते, कसम खा के फरमा दी, ये मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक कि अपने फैसलों में आपके पास ना आए कि आप इनके दरमियान फैसला करें। फिर उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपके पास आए, फिर अपने दिल में कोई तंगी भी ना महसूस करें मिम्मा कदईता, इससे जो आपने उनके लिए फैसला किया, तो उस मामले में फिर जो आप फैसला कर दें उसमें अब ये ना कहें कि ये तो हमारे साथ अच्छा फैसला नहीं हुआ, ये तो हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हो गई, और युसल्लिमु तस्लीमा, और अपना सर झुका दें, तस्लीम कर लें उसको। तो तीन बातें कही गई कि झगड़े के बाद अपने फैसले इधर लेकर आए, जब आप फैसला कर लें दिलों में तंगी भी ना हो, फैसला हो जाए तो उसको फैसले को मान लें, सर झुका दें। और आज क्या होता है, जब हमें ये पता चलता है कि मैं यहां की कोर्ट में अगर जाऊंगी, जिस मुल्क में हम रहते हैं यहां पे तो इस्लामी निजाम नहीं है, इस्लामिक कंट्री नहीं है, तो जब मैं इनकी कोर्ट में जाऊंगी ना, तो मुझे जो मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। बस ना, मिसाल के तौर पे कि तलाक का मामला ही है फॉर एग्जाम्पल, तो अब मैं यहां की कोर्ट में जाऊंगी तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ की कोर्ट में जाती हूँ इसलिए कि मुझे पता है कि मैं अगर अल्लाह रसूल की तरफ आई ना, जबकि कुरान हदीस मुझे साफ बताता है कि ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ये आपका हक नहीं है, तो मैं कहती हूँ लो अब हम इस कंट्री में रहते हैं, हम तो यहीं का कानून फॉलो करेंगे। वो तो बैक होम हो गया, वो तो जो भी पीछे की बातें हो गई, अब तो नहीं हम वो वाला मान सकते ना। अब हमें पता चल रहा है ना कि हमें यहाँ फायदा मिल रहा है, तो उनकी कोर्ट में चले गए। ये देखिए, ये रियलिटी है ना। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं है, आपकी अदालत नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये भी तो एक अदालत है कि कुरान हदीस आपके सामने है, लेकिन सुन के बिठस से मस नहीं हुए, ऐसे इग्नोर कर दिया कि जैसे कि है ही नहीं, और दिल भी राजी नहीं है क्योंकि वो तो फैसला दे चुके हैं, दिल राजी नहीं है उसके ऊपर, दिल उसको मानना ही नहीं चाहता। और वैसे सुबह उठ के सुबह शाम के अजकार में करेंगे रदी तु बिल्लाही रब्बन व बिल इस्लामी दीना, रदी तु बिल्लाही रब्बन का मतलब फिर क्या हुआ? और आपने तो तस्बीह का भी माना पड़ा है ना, कि अल्लाह तेरा हर फैसला नक से पाक है, कमी से पाक है, किसी किस्म की भी ऐसी बात से पाक है जो कि लाइल्मी पे मबनी हो, या जो कि ना इंसाफी वाली हो, या कोई इससे पाक है, अल्लाह तेरा हर फैसला कामिल है। हम तो अभी ये तस्बीह के ऊपर बात करके आए, अल्लाह अकबर। लेकिन जब हमें ये मालूम होता है कि कौन सी कोर्ट में हमारे हक में फैसला जाएगा, तो हम उसी तरह रुजू करते हैं। सोच लेना, अब मैंने अब एक तलाक का मामला आपको बता दिया, इससे और भी जो फिकही मसाइल हैं उनके अंदर हदीस सामने आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, कुरान की आयत सामने आ जाए तो क्या करते हैं। अभी कुरान की आयत आई हमारे सामने, हमारा क्या रिएक्शन था? जो ईमान वाले होते हैं वो तो फौरन कहते हैं समयाना हुआ पाना, और हम क्या करते हैं इस तरह बस बिल्कुल मुंह जैसे दूसरी तरफ करते हैं, जैसे सुन ही नहीं रहे। अल्लाह अकबर, क्योंकि वो बात हमारी अकल में नहीं आती, क्योंकि वो बात हमें लॉजिकल नहीं लगती, क्योंकि वो बात हमारी हमारा मन नहीं मान रहा होता, इसलिए तो फिर अल्लाह रसूल की बात कहाँ रह गई। अगर हमने अपने मन की बात माननी है, अपने दिल की बात माननी है, तो अल्लाह रसूल की बात कहाँ रह गई फिर? उससे नीचे है क्या? ये बताइए, अल्लाह रसूल की बात नीचे है और मेरे मन की बात ऊपर है क्या? अल्लाह अकबर। तो ये है कि ये आज भी उसी तरह एप्लीकेबल है, और इन्हीं चीजों से पता चलता है कि एक इंसान के अंदर ईमान कितना है, क्योंकि इन ये मुनाफिकीन की खसूसियात बताई जा रही हैं। ये ना हो कि हमारे अंदर निफाक का मर्ज हो, क्योंकि आगे भी बात देखें, आगे आगे बात कर लेते हैं तो फिर ज्यादा बात कंप्लीट आपको समझ आ जाएगी। वह इन यकुन लहुमुल हकु या तू इलही मुतईनीन, और अगर हक इनकी तरफ को हो जाए, यानी बात इनके हक में हो, फैसला इनके हक में होना हो, इनको पता है कि अब मेरा मेरा इसमें तो फायदा है ना, तो या तू इलेही मुतअइनीन, तो वो आएंगे इस तरफ मुती होके, फिर तो अल्लाह रसूल की बात, फिर तो फौरन कहेंगे देखा इस्लाम भी तो हमारा यही कहता है ना। अब इस्लाम याद आ गया, और इससे पहले तो आपको इस्लाम नहीं याद आया था, दूसरे मामला में क्यों नहीं इस्लाम याद आया था? क्योंकि वहां पर पता था ना कि वहां पे मुझे कुछ मिलना नहीं है या मेरा कोई नुकसान हो जाएगा, यहाँ अल्लाह रसूल ने तो इस बारे में ये फरमाया, तो वहां पे इस्लाम तो बिल्कुल भूल ही गए, जैसे इस्लाम कुछ होता ही नहीं, शादियों पे, ब्याहों पे, इस पे, किसी की फौतगी पे तो इस्लाम याद ही नहीं बिल्कुल। हाँ, मगर जहां पे हमारा कोई मकसद पूरा हो रहा हो, हमारी कोई बात हमारी हाँ में हाँ मिलाई जा रही हो, मैं भी वही चाहती हूँ, वही इस्लाम कहता है। जैसे मसलन है, जब मुझे इस्लाम से बहुत याद आता है, जब कोई बच्चा मेरे से बदतमीजी करे मेरे साथ, तो फिर मुझे वो मैं पता नहीं है तुम्हारा दीन इस्लाम के, तुम्हारा दीन इस्लाम क्या हकूक बताता है माँ के, तुम्हें पता नहीं आप सर सलम ने क्या फरमाया, तुम्हें पता नहीं अल्लाह का क्या हुक्म है इस बारे में, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है ना कि मेरी मेरे हक में बात जा रही है, जहां पे हक में ना जा रही हो मेरे, मेरी तरफ से ज्यादती है या मैं कुछ गलत कर रही हूं, वहां पे इस्लाम ही याद नहीं। और जहां पे अपनी बात है वहां पे देखो कैसे इस्लाम आता है। और आज लोगों ने इसी तरह इस्लाम को तमाशा बनाया हुआ है, वाकई तमाशा बनाया हुआ है। देखने जिस जिस जगह पर हमारी फेवर में इस्लाम की कोई बात हो तो फिर हम इस्लाम को कोट करते नहीं थकते, हदीसें भी फिर हमें आती हैं, कुरान की आयतें भी हम ढूंढ के ले आते हैं, फिर बड़े बुलंदोबांग हम तरीके से ऐलान करते हैं। और जिस जगह पे हमारी मर्जी नहीं, हमारी फेवर में नहीं है इस्लाम, वहां पे हमें इस्लाम भूल जाता बिल्कुल। तो बात फिर किस चीज की हुई? फिर तो बात हम अपनी मर्जी की हो गई ना। मर्जी फिर मेरी खुदा है, फिर अल्लाह रसूल को की बात तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। जब मर्जी मेरी होगी, मेरी मर्जी के हक में फैसला होगा तो तब मैं अल्लाह रसूल की बात भी मान लूंगी, जब मेरी मर्जी के खिलाफ होगा तो अल्लाह रसूल की बात नहीं मानूंगी। तो फिर डोमिनेटिंग चीज क्या है? फिर ऊपर क्या है? मर्जी। और नीचे क्या है? अल्लाह रसूल की बात। ये सीधा सीधी बात है, ये तो आईना है, ये तो साफ कुरान हमें दिखा रहा है। अच्छा फिर इतनी बातें याद आ जाती हैं, भाई इसमें तो कोई लॉजिक नहीं नजर आती, देखो इसके अंदर तो ऐसा नहीं, देखे ये तो आजकल चल ही नहीं सकता, देखे क्योंकि मेरी फेवर में नहीं ना जा रही, मैंने करना नहीं है ना इसलिए। फिर ये भी याद आ जाता है, हस्बैंड देखे मना करते हैं ना, वालदेन मना करते हैं ना, फलां करता है फलां, जिस चीज पे अपना मन ना माने तो फिर हस्बैंड भी मना करते हैं। कोई होगी, कोई 1% शायद कोई औरत होगी जिसके हस्बैंड इतने ही मुश्किल उसको डाल रहे हैं, बाकी सारों का अपना मन नहीं मानता, और बहाने हस्बैंड के होते हैं, उसको चाहे पता भी ना हो या उसने कभी एक दफा कह दिया, और उसका हुक्म फिर कुरान हदीस से भी आगे चला जाता है हमारे लिए। और वैसे शॉपिंग के लिए चाहे हस्बैंड ना इजाजत दे, लेकिन बस फिर नहीं, हस्बैंड की क्या परवाह है, वैसे हस्बैंड कोई बात कह दे तो फिर मानना नहीं, वैसे हस्बैंड से चाहे झगड़े करते रहना, और झगड़े करके भी अपनी बातें मनवाना वो ठीक है भाई, यहाँ पे हस्बैंड को ना खुदा बना लिया, सर पे बिठा लिया, इन्हीं बातों में क्यों आता है हमें ये, बाकी बातों में क्यों नहीं आता? बाकी टाइम पे तो नहीं हमने सर पे हस्बैंड को बिठाया होता? तो ये कुरान हमारे कच्चे छिटे खोल रहा है, कुरान हमें बता रहा है, देखो कि तुम्हारे रिएक्शंस क्या होते हैं। और ऐसे लगता है कि ये मुनाफिकीन की नहीं बातें, ये तो हमारी बातें हैं। जब अल्लाह की इताअत की बात आती है, जब अल्लाह ताला का कोई हुक्म हमारे सामने आ जाता है, हम देख भी लेते हैं, फिर हम ऐसे रुख मोड़ लेते हैं, लेकिन जहां पे हमारे हक की बातें कोई इस्लाम बता रहा है वहां पे देखो बीवी के हकूक बता रहा हो कुछ ऐसा, तो फिर देखो कि कितने हमें आता है, सारा सबक याद है फिर हमें। लेकिन वैसे अगर हमें कुछ और बात बताई जाए जो हमारे हक में नहीं, तो हम कहते हैं हमारी ना बस जेहन में बात ही नहीं रहती, भूल ही जाते हैं हम ना, बस जेहन बड़ा कमजोर हो गया। अल्लाह अकबर। और जब आपको कोई पूछे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं ये कह सकते, एक बात नहीं समझ आती, हम क्यों नहीं ये कह सकते कि बस अल्लाह का हुक्म है तो मैं कर रही हूं, मेरे लिए इतना ही काफी होना चाहिए। अगर हिजाब है, कोई भी और काम है, कोई भी सूद ना लेना या ये, तो वो दूसरे आपके ऊपर हंस रहे हैं और कहेंगे तो आप लोग ये ऐसा क्यों करते हैं, आप लोग क्यों इस तरह से, तो आप सिर्फ ये कहते हैं मेरे क्रिएटर ने मुझे ऑर्डर किया, बस मेरे लिए इतना ही काफी है, क्या ये काफी नहीं है? अब हम बेचारे लग जाते हैं अब इसके अंदर, ठीक है आपको इसमें कोई बुराई नहीं है, आप उसकी कोई मसलहत, उसकी हिकमत जरूर निकाल के लाएं, क्योंकि उसको तो नहीं पता इतना कि क्रिएटर क्या है क्या नहीं है, आप उसकी हिकमत निकाल के लाएं, लेकिन आपके अपने लिए वो हिकमत नहीं होनी चाहिए कि मैं उस वजह से अमल करूं क्योंकि इसके अंदर ये मसलहत है, रोजा इसलिए रखूं क्योंकि ताकि मैं पतली हो जाऊंगी, आपके लिए बस इतना ही काफी होना चाहिए, मेरे अल्लाह का हुक्म है। हाँ हिकमतें पता चल जाए वेल एंड गुड, नहीं भी पता चलती तो बस मुझे नहीं इसे फर्क पड़ता, वो सेकेंडरी चीज है, मेरे लिए सबसे टॉप की चीज क्या है? अल्लाह का हुक्म, बस इतना आ जाए कि मुझे पता चल जाए अल्लाह का हुक्म ये है, फौरन समय नवाताना। और अल्लाह का हुक्म आ जाए फिर इंसान मानता क्यों नहीं है, उसके सामने आ जाए साफ लिखा हुआ है या साफ हदीस है फिर क्यों नहीं मानता, उसके रीजंस हो सकते हैं, और कुरान वो रीजन दे रहा है आयत नंबर 50 में, और रीजन बहुत स्केरी है, क्योंकि अगर हम अपने आप को उन लोगों में से देखते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म आता है और हम हमारे हक में उतना नहीं होता, या हमारे दिल नहीं मान रहा होता, हमारी मर्जी नहीं होती, या हम ये समझते हैं कि इसमें मुझे नुकसान हो जाएगा, मेरे मुझे उतना कुछ नहीं मिलेगा जितना मिलना था, तो हम एराज करते हैं। और जहां इस्लाम ये कह रहा है, कुरान ये कह रहा है, हदीस ये कह रही है, ऐसी बात जिसमें अपना फायदा है, जिसमें अपना भी दिल करता है करने को, या जिसके अंदर आपको एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है लोगों में, या जिसमें आपको लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं, या आपकी तारीफें करते हैं, या उसमें आप दीनदार भी कहलाते हैं, जो आपको शौक है कहलाने का, तो फिर बड़ा भाग 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 के करना शुरू कर देते हैं, और फिर जोर जोर से बोलते भी हैं, देखा तुम्हें नहीं पता अल्लाह का हुक्म है, तुम्हें नहीं पता कुरान में ये है। अब इस रवैये के पीछे वजह क्या है, क्यों ऐसा है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो उस वक्त तो इसको कोई परवाह नहीं थी, मानना ही नहीं इसने। अब हमने मसलन पर्दे की आयात पढ़ी, सबने पढ़ी, कुछ लोगों ने पढ़ी और ऐसे पढ़ी जैसे कभी पढ़ी ही नहीं, जैसे कभी आई ही नहीं, टस से मसी नहीं हुए, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, तो क्या वजह हो सकती है? ये तो एक एग्जाम्पल है ना, क्या वजह हो सकती है? ये तीन वजूहात बताई गई। अल्लाह अकबर, अफी कुलूबिहिम मरद, क्या इनके दिलों में कोई बीमारी है? बीमारी कौन सी? निफाक की, मर्ज लगा हुआ है इनको निफाक का। निफाक का भी एक मर्ज होता है, शुरू में सूरह बकरा में याद है हमने पढ़ा था। तो इनके दिलों में ये दुनिया की मोहब्बत की बीमारी, या दुनिया को खुश करने की बीमारी, या यहां पर एक्सेप्टेबल हो जाने की बीमारी, ये सारी बीमारियां निफाक के अंदर ही होती हैं, ये निफाक के सिम्टम्स हैं। निफाक के दिल के एक बीमारी होती है ना, अंदर किसी के अंदर कैंसर हो तो अब यहाँ पे भी दर्द है, वहां पे भी है, बुखार भी चढ़ गया, गले के अंदर भी सोजिश है, ये वो सारी जड़ उसकी क्या है, वो कैंसर है। इस तरह निफाक है ना, इसके सिम्टम्स डिफरेंट तरह से जाहिर होते हैं। तो क्या इनके अंदर बीमारी है, अमीर ताबू, या ये शक में है, या इनको शक क्या किसी बात का, अभी तक इनको यकीन ही नहीं आया, शक में पड़े हैं, क्योंकि जिस बात का यकीन आ जाता है ना इंसान, तो उसको टालता ही नहीं। तो क्या मुनाफकत है? या तो मुनाफकत है, आपके सामने हुक्म आया और आपने आपका दिल नहीं कर रहा मानने को, या आपको उसमें अपना नुकसान लग रहा है, या आपको लग रहा है कि ये तो बस कभी मैं कर ही नहीं सकती, ये तो बस मुझे लगता है कि बड़ा बड़ी गलत बात हो गई ये तो ऐसे, और आप इग्नोर कर देते हैं, तो उसकी वजूहात अल्लाह ताला ने बताई है कि क्या निफाक के अंदर, क्योंकि जिसके अंदर मुनाफकत होती है ना, वो ही ऐसा करता है, वो मोमिन तो ऐसा नहीं करता। जब मुनाफकत होती है तो फिर इंसान हीले बहाने भी ढूंढता है, एक्सक्यूजेस, फिर बस बहसें ही करता रहता है, कहीं से कोई पॉइंट ले आता है, नहीं ये तो इस तरह नहीं, उस तरह, उस तरह नहीं, उस तरह नहीं, ये तो उनके लिए था, नहीं ये तो इस जमाने का है, ये तो ऐसे, या फिर शक क्या है, शक क्या है, यकीन ही नहीं है कि अल्लाह की तरफ से है, या ये शक है कि ये बात ही सही नहीं, या कुछ और तरह का शक है, क्या शक है, किसी शक में पड़े हुए हो, अल्लाह की बात तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकती, ये शक है। अल्लाह अकबर, जुबानी दावे तो बहुत थे ईमान के, लेकिन दिलों में जब शक पैदा हो जाए ना, अब मिसाल के तौर पे आज सिर्फ अगर शक ही हो जाए ना, किसी औरत को अपने हस्बैंड के ऊपर शक हो जाए कि ये मेरे साथ वफादार नहीं है, क्या उसी तरह उसके साथ रहेगी? क्या उनके रिलेशनशिप पहले जैसा रहेगा? ये मुझे चीट कर रहा है तो क्या रिलेशनशिप वो रहेगा? शक जिस चीज में आ जाता है वो तो चीज इंसान वैसी रहती ही नहीं। या तीसरी वजह, या खाफूना अन यहीफ अल्लाह अलैहि व रसूलहू, या उनको ये डर है कि अल्लाह और उसका रसूल उन पे जुल्म करेगा, ये बेइंसाफी हो रही है उनके साथ। आज फेमिनिज्म का बहुत नारा लग रहा है ना, औरतों के हकूक, औरतों के हकूक, औरतों के साथ बेइंसाफी हो रही है, औरतों मर्दों के साथ उसको खड़ा होना है, औरतें ही इतनी पागल हो गई हैं कि उनको यही नहीं समझ आ रही कि मर्दों के साथ खड़े होने में तो मर्द इनको यूज कर रहे हैं और मर्दों के साथ खड़े होने में इनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो जानी है अगर इनसे मर्दों वाले भी काम लिए जाएं, और औरतों वाले काम तो इन बेचारियों ने करने ही है, और ये मर्द से ज्यादा कमजोर है, तो मर्द अपने भी काम इनसे कराएगा जो वो खुद करता है, और इनके वाले काम भी इनके जिम्मे ही है। पैदा बच्चे तो मर्द नहीं कर लेगा ना, बच्चों को दूध पिला नहीं मर्द लेगा, बच्चों की तरबियत नहीं मर्द कर सकेगा, घर की देखभाल मर्द नहीं कर सकेगा, वो भी यही करेगी और मर्दों वाले काम भी यही करेगी। कहती मुझे मर्दों के बराबर किया जाए, यहाँ कहीं खड़ी होकर कहना शुरू हो जाती है औरत की गवाही आधी क्यों है, ये तो जुल्म हो गया। हाँ तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम ये बात नहीं मानते इसलिए कि तुम्हें लगता है अल्लाह और उसका रसूल तुम पे जुल्म करेगा। अरे एक मुझे किसी ने वीडियो भेजी, उसमें वो एक खातून काफी एज की है और वो कोई शायरी कर रही है जिसमें इस बात के ऊपर इतना मजाक उड़ाया जा रहा है कि औरत की गवाही आधी, और उसके ऊपर इतना कि ये कितनी गलत बात है, और उसके ऊपर इतना वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्या औरतें ये सोचती हैं कि अल्लाह ने इनके साथ जुल्म कर दिया? क्या औरतें ये सोचती हैं इस्लाम ने इनको हकूक नहीं दिए? बहुत ज्यादा है ना ये आजकल, ये बहुत ज्यादा हमारे दिमागों में डाला जा रहा है जिसकी वजह से औरत मार चो रहा है, औरतें बेचारियां सड़कों पे निकल आई, इस्लाम उनको इस्लाम से प्रॉब्लम है कि इस्लाम नहीं उनको हकूक दे रहा, उनको ये प्रॉब्लम है कि इनको घर में रखा क्यों जाए, उनको ये प्रॉब्लम है इनको पर्दा क्यों कराया जाए, उनको ये प्रॉब्लम है कि वो नौकरी पे क्यों नहीं उस तरह जा सकती और कमा सकती जैसे कि मर्द कमा रहे हैं, उनको ये सारी चीजों के प्रॉब्लम है, उनको शादियों से भी प्रॉब्लम है कि शादी है क्यों, हम तो इंडिपेंडेंट लाइफ ऐसे ही गुजारे कि हम अकेले रह सकते, हमें नहीं किसी मर्द की जरूरत, उनको ये प्रॉब्लम है कि उनको क्यों नहीं रातों को उस तरह बाहर घूमने दिया जाता जैसे मर्दों को, उनको ये प्रॉब्लम है कि हमें उस तरह बैठने क्यों नहीं दिया जाता टांगे खोल के जैसे मर्द बैठ सकता है, उनको ये सारी चीजों में ही प्रॉब्लम है। तो आप मुझे बताएं क्या ये सोचते हैं कि अल्लाह ने इनके साथ जुल्म किया और उसके रसूल ने जुल्म किया कि आज ये खड़े होके इसके खिलाफ और बातें कर रहे हैं और मार्च कर रहे हैं और उसके ऊपर प्ले कार्ड उठा लिए कि मैं नहीं शोहर के लिए कोई रोटी पका सकती और मैं नहीं उसके लिए कुछ कर सकती, यानी अपने शोहर की खिदमत करना ये भी जुल्म है। तो इन तीनों में से कोई एक वजह तो होगी, यहाँ तो ये तुम सोच रहे अल्लाह तुम पे जुल्म करने वाला। आपने देखा कभी माँ बाप को, जो हम में से माए हैं, कभी अगर बच्चा हमारी कोई बात ना माने और ये समझता है कि जो है ना माँ मेरे ऊपर बड़ा जुल्म कर रही है कि मुझे सुबह सुबह उठा के बिठा देती है स्कूल के लिए या फजर के लिए, तो माँ क्या कहती है आगे से कि तुम क्या सोचते मैं तुम्हारे साथ जुल्म करूंगी, मैं तुम्हारे साथ ज्यादती करूं? हालांकि माँ बाप कभी कभी कर भी सकते हैं, इसलिए कि उनके पास बेचारों पास इल्म नहीं होता, तो वो कभी अपने बच्चों को ऐसी चीजों में डालते हैं, अपनी तरफ से खैरख्वाही होती है लेकिन उनके पास इल्म नहीं होता, तो वो ऐसी जगह पर डाल देते हैं या ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पे उनको भी नहीं पता था, तरबियत में कहीं उनकी तरफ से कोई कोताही हो जाती, उनको नहीं इल्म था नहीं तजर्बा था, लेकिन अल्लाह ताला उसके ऊपर तो कोई ये सोच ही नहीं सकता, वो इल्म वाला भी है और उसके पास हिकमत भी है और उसके पास खैर ख्वाही भी है तुम्हारे लिए। उसका और तुम्हारा रिश्ता तो पता है सबसे पुराना है, किसी और रिश्ते ने भी अभी जन्म नहीं लिया था जब से, शोहर के साथ तो रिश्ता बहुत बाद में होता है, बलूगत के बाद होता है, कहीं किसी का 20 साल में, किसी का 25 साल में, किसी का 30 साल में, बहुत बाद का रिश्ता है ये, तो उस रिश्ते को सर पे बिठाया हुआ, और वो अल्लाह जिसके साथ तब से रिश्ता है जब से आप रूह थे, जब से उसने आपको पैदा किया उस वक्त से उसका और आपका रिश्ता है, और उसकी बात कोई माने नहीं रखती। देखिए रिश्ता जितना पुराना होता है ना उतना मान भी ज्यादा होता है, उतना इंसान समझता है कि मैं इसको जानता हूं और ये मुझे जानता है, और उसके साथ एक अपनाइयत का एहसास होता है, जैसे लोग नहीं कहते मैं फलां को 20 साल से जानती हूँ, मैं तो इतने छोटे छोटे थे ये तब से मैंने इनको देखा, मैं उस वक्त से इनके घर आना जाना, तो ये क्यों बताते हैं हम, बताने के लिए कि हमारी कितनी क्लोजनेस है। आपका और अल्लाह का रिश्ता तो बहुत क्लोजनेस का रिश्ता है, वो आपसे खैर कोई नहीं चाहेगा जिसने आपको पैदा किया अपने हाथों से, आज तक जो कुछ मुझे और आपको मिला वो अल्लाह ताला ने दिया, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो सांस हो, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे वो देखना सुनना हो, जैसे वो चाहे वो चलना फिरना हो, चाहे वो अकल और शऊर हो, जिंदगी हो या कोई भी और नेमत हो, सब अल्लाह की तरफ से। और फिर ये सोचते हो कि अल्लाह ने मेरे ऊपर जुल्म किया होगा, मुझे उतने हकूक नहीं ना दिए जितने मर्दों को दिए। अब कह देते हैं फौरन हम, ये मौलवियों की बातें हैं, मौलवियों की बातें नहीं, अब कह नहीं ना सकते अल्लाह की बात। देखो जाके वो अल्लाह ही की बात होती है, लेकिन आप क्या करें। तो अब अल्लाह ताला के ऊपर बात करने से जरा थोड़ा सा भी शर्म आती है ना, तो मौलवियों के ऊपर बात क्या क्या कि उसको गालियां देते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, कहना क्या चाह रहे होते हैं, ये अल्लाह की बात नामंजूर। मौलवी बेचारे की क्या हैसियत है, वो कैसे कोई अहकाम दे सकता है जो अल्लाह की बात है। तुम सोचते हो अल्लाह ने तुम पे जुल्म कर दिया, और उन अहकाम पे हंसना, अल्लाह के हुक्मों पे हंस रहे हो तुम। अरे दिलों में कोई रोग लगा हुआ है मुनाफकत का, या तुम किसी शक में पड़े हुए, तुम्हें शक है कि अल्लाह तुम्हारे साथ ज्यादती करेगा और या वो तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा। शक की बुनियाद पे कह रहे होगे ना, या तुम्हें यही शक पड़ गया कि अल्लाह ताला पता नहीं वो हमारा खालिक भी है या नहीं, या वो हमारे लिए सही सोचता भी है या नहीं, या उसके पास इतना इल्म भी है या नहीं। नाउज़ुबिल्ला नाउज़ुबिल्ला, तुम्हें शक पड़ गया कि अल्लाह ताला को पता नहीं, पता नहीं 21st सेंचुरी का अल्लाह को पता भी था कि नहीं। क्या बात है, इन तीनों में से एक बात तो है, जब जब हम अल्लाह का हुक्म सामने आया और उस पर अमल नहीं करते ना, इन तीन में से अपने लिए एक बात निकालिए कि वो क्या वजह है। क्या दिल ही नहीं मानता, दिल क्यों नहीं मानता, या तो दिल को बीमारी लग गई है इसलिए नहीं मान रहा और हम मोमिन बने फिर रहे हैं, या यकीन नहीं अंदर, किस पे फिर यकीन नहीं है। फिर पूछे अपने आप से, अल्लाह की जात पे यकीन नहीं है, रसूल की रिसालत पे यकीन नहीं है, अल्लाह ताला के इल्म पे यकीन नहीं है, इस कुरान पे यकीन नहीं है, किस पे यकीन नहीं है। तीसरी बात, क्या जो हुक्म दिया गया है इसमें मेरे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, मैं मजलूम, मेरे ऊपर जुल्म किया जा रहा है क्या, अल्लाह ने जुल्म कर दिया, रसूल ने जुल्म कर दिया, क्या कहना चाहते हैं, इनमें से तीनों में से कौन सी बात है हमारे लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह तो जुल्म नहीं कभी किसी के साथ कर सकता, उसने तो अपने ऊपर जुल्म हराम किया हुआ है, हराम, खुद उसने फरमाया कि मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया हुआ है। बंदो तुम भी ना एक दूसरे पर जुल्म करो, वो तो बंदों को जुल्म करना नहीं पसंद करता, वो खुद कैसे जुल्म कर सकता है, इतना बड़ा बोहतान अल्लाह के ऊपर। और जो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधता है उसकी सजा तो कितनी जगह कुरान में, फिर वो भी पढ़ ले, ये झूठ है अल्लाह के ऊपर कि कोई कहे कि मेरे ऊपर जुल्म किया है। बल उलाई का मुतालिमून, बल्कि ये खुद ही जालिम है। इतनी सख्त आयत है ना, क्योंकि हम आंख बचा के इस तरह से एक तरफ को नहीं हो सकते कि जैसे हमें पता ही नहीं चला, हमें जब पता चल रहा है और फिर हम नहीं करते ना, देयर मस्ट बी अ रीजन, और वो फाइंड आउट हमें करना है क्या रीजन है। फिर आगे मोमिनों की भी तस्वीर दिखा दी है, अगर आपको कोई शक है इस चीज के अंदर, आपको कोई समझ नहीं आ रही इस चीज के अंदर कि अब मुनाफिकत होती क्या है, मैं तो मुनाफिक नहीं हूं, मैं तो पक्की मोमिन हूं, तो मोमिन भी देख ले वो कैसे होते हैं, उनकी भी तो कोई खूबी होगी ना। यहां पे साफ साफ दोनों को दिखा दिया कि कोई भी डाउट नहीं रह गया। देखिए हम हमारे जहन में पता नहीं मुनाफिक का क्या है, वो कोई हवाई मखलूक होगी जिसके माथे पे लिखा होगा मुनाफिक, तो हम पढ़ लेंगे तो वो होता है मुनाफिक, और बाकी हम सारे बस कलमा पढ़ पढ़ के ना मोमिन ही है। तो वो भी कह रहे थे आमन्ना बिल्लाही व बिर्रसूल, वह आता ना, वो भी कहते हैं मोमिन में, और उसमें क्या फर्क होता है। इन्नमा काना कौल अल-मुमिनीन, बेशक होता है जो कौल मोमिन का ना, मोमिन की तो बात होती है, इजा दुउ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुमा बैनहुम, जब उसको बुलाया जाता है अल्लाह और रसूल की तरफ के वो फैसला करें उसके दरमियान। आप देखें इधर भी आया आयत नंबर 48 में, इजा दुउ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुमा बैनहुम, इसके पास भी आया, वो क्या करता है, इजा फरीकुम मिनहुम मुअरिदून, ये क्या करता है, अन यकूलू समिअना व अतअना, सेकंड क्वेश्चन ही नहीं, वो फौरन कहता है मैंने सुन लिया मैंने मान लिया। वउलाए कौमुल मुफ्लिहून, अल्लाह ताला ने उनको तो फरमा दिया था, तो मोमिन ही नहीं है, और इनको फरमाया ये हैं जो कामयाब होने वाले हैं। इसका मतलब वो क्या है, फेलियर्स, अल्लाह ताला ने इनको फेलियर डिक्लेयर कर दिया। जब इनको कहा जाए कि आओ अल्लाह और उसका रसूल आपके दरमियान फैसला करें, चाहे वो जिंदगी गुजारने के तरीके हैं, चाहे वो विरासत के मामलात हैं, चाहे वो अदालती और कोई मामलात हैं, जैसे आप कहें तलाक के हैं, निकाह के हैं, और चीजों के मामलात हैं, इनमें फैसला करें। आपको चाहे ये लगे कि ये फैसला मेरे खिलाफ जाएगा, इसमें तो मुझे पैसे कम मिलेंगे, वहां जाती हूं तो ज्यादा मिलेंगे, लेकिन आप जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म सुन लें तो आप कहें समय ना आता, यहीं पे टेस्ट का टाइम होता कि वहां पे भी फैसला हो सकता है, यहां पे भी फैसला हो सकता है। एक वो अदालत है, एक ये अदालत है। आप किसकी तरफ भागते हैं? आपके कहां पे कहते हैं समय ना आता? और ये बहुत ही मुश्किल होता है उस वक्त, क्योंकि इंसान जब उसके दिल के अंदर निफाक होता है ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे गोली, एक कड़वी गोली के कैसे हलक से निकलू, कैसे इसको नीचे उतारू, हाय मेरे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया, मुझे तो कुछ नहीं मिला, यानी अल्लाह रसूल मेरे से मेरा हक छीन रहे हैं और मेरी ये अदालतें जो है ना ये मुझे दे रही हैं हक, औरत होने के नाते मुझे यहां पे ज्यादा मिलेगा, और ये जो जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं ये मुझे ज्यादा मेरा हक दिलाएंगी, अल्लाह रसूल ने तो मेरा हक ही छीन लिया, और नाउजु बिल्ला अस्तगफिरुल्ला। सोच लें फिर, अगर कामयाब होना है तो किसमें कामयाबी है? अल्लाह रसूल का हर हुक्म हमारे लिए ऐसा होना चाहिए समय ना आता, हमारे लिए आगे जूं चरा की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, या हम कुछ आगे बोलें, कुछ जस्टिफिकेशंस लाएं, कुछ बहाने लाएं, कुछ तावीलें करें, कुछ ये कहें ये नहीं है, लॉजिक फलां नहीं है, साइंस ये कहती है, लेकिन ये तो मेरे इमाम ने कहा, लेकिन ये तो फलाने कहा, लेकिन नहीं, बस समय ना आता, लिसन एंड ओबे। आप दुनिया में देखें, आप फौज का महकमा देख लें या कोई भी और जगह देख लें, अगर कोई भी सबॉर्डिनेट अपने जो उसके ऊपर उसका बॉस है उससे ये पूछना चाहिए, मुझे पहले इसकी लॉजिक बताएं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती, ये तो आप क्या कह रहे हैं, ये आप क्या, तो काम हो गए फिर हर जगह। हर जगह डिसिप्लिन के लिए क्या होता है? लिसन एंड ओबे, राइट। अल्लाह ताला तो सबसे ज्यादा इस बात का हकदार है कि हम उसको कहें समय ना आता, हम समय ना आता और जगह पे बड़ा कर रहे होते, लेकिन अल्लाह ताला के सामने कौन कहता है समय ना आता, ये टेस्ट होता है। पुलिस आपको वहां पे खड़े कर दे के, यहां पे आप खड़े हो जी गाड़ी इधर साइड पे करें, आप फौरन समय ना आता करते, अदालत कहे समय ना आता, किसी मुल्क का लॉ कहे तो समय ना आता, लेकिन क्या बात है, अल्लाह ताला के अहकाम में ही समय ना आता नहीं। तो यहूदियों की बात आई थी ना सूरह बकरा में, वो क्या कहते हैं जब अल्लाह ताला का हुक्म आता, समय ना आ सही ना, हमने सुना लेकिन हमने मानना नहीं है, मानना नहीं है हमने, करना हमने वही है जो हमारी अपनी मर्जी, ठीक है सुन ली है, हो गई है ना बात, बस काफी है। तो ये मोमिन का किरदार नहीं होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें पक्के और सच्चे मोमिन बना दे या अल्लाह, हमारे तो अमलों में बहुत कमियां हैं। वह मई युति अल्लाह व रसूलहू व यख्श अल्लाह यत्तकी, और वो लोग जो इताहत करते हैं अल्लाह की और उसके रसूल की और डरते हैं अल्लाह से और उसका तकवा इख्तियार करते हैं। खशियत में और तकवा में थोड़ा फर्क है। तकवा तो मैंने आपको बताया ना कि अल्लाह ताला की नाराजगी से बचना, अल्लाह की नाराजगी से डरना, वो है तकवा, कि मेरे से कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जो अल्लाह ताला को नापसंद आ जाए, वो मुझसे नाराज ना हो जाए। और खशियत क्या है, किसी की अजमत का इतना एहसास दिल के अंदर हो, उसकी हैबत, उसकी अजमत, उसका जलाल, उसकी बड़ाई, उसकी वजह से ताजीम में उसके आगे झुके हो, उसका डर रखते हो, ये है फौलाए कहुमुल फायजून। तो ये लोग हैं जो के कामयाब होने वाले हैं। ये चार क्वालिटीज बताई गई, उनके पीछे आ गया ना कि वो कहते तो हैं अताना, लेकिन बस कहते ही हैं, इताअत करते नहीं है, बोलते बहुत हैं करते नहीं है इताअत, और ये इताअत करके दिखाते हैं तभी ये कामयाब है। कभी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को आपने देखा कि वो उन्होंने भी इतने दावे क्यों, या सहाबा बाकी उन्हें इतने दावे क्यों कि हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसे, लेकिन आप मुनाफिकीन का बहुत देखते हैं, वो तो मस्जिद में खड़े होके भी कहते थे हम तो ऐसे कर देंगे, देखना अब अगली दफा आई ना तो हम ये कर देंगे, हम तो आपके साथ निकलेंगे, हम तो जिहाद पे जाएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम अपनी जाने लुटा देंगे, हम फलां कर देंगे। जब वक्त आता तो कुछ भी नहीं था। तो जिसने करना होता है ना कुछ, वो बातें बहुत नहीं बोलता, लेकिन जब कुछ भी नहीं करना हो तो फिर बस बातें ही बातें हैं ना। तो जो भी इताअत करेगा अल्लाह की, यानी ये कुरान में जो आ गया, अल्लाह की इताअत यही है ना, उसके अंदर फराइज है जितने फराइज, रसूल की जितनी अहादीस है, और यख्शल्ला अल्लाह से डरता है, उसके दिल के अंदर अल्लाह का डर है, जो गुनाह हो चुके उनके बारे में डरता रहता है कि आए मेरे से ये गुनाह हो गया अब मेरा क्या बनेगा, उनके ऊपर तौबा करता रहता है। वह यत्तकी, और जो तकवा इख्तियार करता है, यानी आगे फ्यूचर के मामले में, वो इंसान जिसको कहते हैं ना बच बच के चलना, हम कहते हैं ना परहेजगारी, तकवा क्या परहेजगारी है, परहेज किस चीज से, गुनाहों से जो अभी हुए नहीं है, कहीं हो ना जाए मुझसे, हर वक्त उसको ये फिक्र रहती है कहीं मुझसे गुनाह ना हो जाए, कहीं मैं इस चीज के अंदर ना पड़ जाऊं, अपने आप को बचा बचा के चलता है जिंदगी, ऐसी जगह पे ना जाऊं यहाँ पे ये ना हो मैं गुनाह में पड़ जाऊं, मैं ऐसे दोस्तों में ना बैठूं ये ना हो मैं गुनाह में मुलव्वस हो जाऊं, ये ना हो मुझे गुनाह की तरफ ले जाए, मैं ऐसी जगह ना रहूं वरना ये ना हो कि मैं भी इन्हीं चीजों में चला जाऊं। तो पिछली जिंदगी के बारे में भी अल्लाह से डरता रहता है, आइंदा जिंदगी में भी इतना हर वक्त मोहतात रहता है कि कहीं मैं फिसल ना जाऊं, कोई ऐसी चीज ना मुझसे हो जाए कि मेरा पैर फिसल जाए, मैं गुनाह में पड़ जाऊं, अपने आप को सारी जिंदगी बचा बचा के ही चलता रहता है, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह का डर है। तकवा भी डर को कहते हैं ना, अल्लाह का डर है इस बात का कि अल्लाह ना मुझसे नाराज हो, अल्लाह ताला मुझसे अपनी नजर करम ना फेर ले। तफसीर कुर्तुबी में एक जगह आता है कि एक दफा हजरत उमर की बात आती है कि उनसे इन चार चीजों का मफहूम और फर्क पूछा गया, तो ये वाक्या उसके अंदर आता है कि एक दफा हजरत उमर मस्जिद नबी में खड़े थे, अचानक एक रूमी देहकानी आदमी बिल्कुल आपके बराबर आके खड़ा हो गया और कहने लगा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, तो उसने कहा मैं अल्लाह के लिए मुसलमान हो गया। तो उन्होंने पूछा कि इसका कोई सबब है, उसने कहा हाँ बात यह है कि मैंने तौरात इंजील जबूर और पिछले अंबिया की किताबें पढ़ी हैं, मगर हाल ही में मुझे एक मुसलमान कैदी कुरान की एक आयत पढ़ता हुआ सुनाई दिया, तो मालूम हुआ कि एक छोटी सी आयत ने तमाम पिछली किताबों को अपने अंदर समो लिया, तो मुझे यकीन हो गया कि यह अल्लाह की तरफ से। तो तुमर ने पूछा कि वो कौन सी आयत है, तो उसने यही आयत तिलावत की और साथ तफसीर भी उसने बयान की कि मैं युते अल्लाह मतलब जो फराइज को अंजाम देता है और रसूला हो और जो सुन्नत को हदीस को उसके मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पाबंदी करता है जो आपने हुक्म दे दिया, और यक्षल्लाह के अंदर क्या है पिछली जिंदगी के मुतल्लिक है, और यत्तकी का मतलब क्या है कि आइंदा बाकी उम्र के लिए। जब इंसान इन चारों चीजों के ऊपर अमल करने लगेगा तो फिर वो फाइज उनमें से होगा, फाइज वो इंसान है जो जहन्नुम से निजात पाके जन्नत में ठिकाना पा ले। हजरत उमर ने ये सुन के फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे जामे कलिमात अता फरमाए जिनके अल्फाज मुख्तसर हैं और मानी बहुत वसी, वाकई एक आयत ने पूरे दीन इस्लाम को अपने अंदर समो ले, जो इस पे अमल कर ले, पिछली जिंदगी के बारे में तौबा करता रहे और डरता रहे अल्लाह से, कभी उसके बारे में बेफिक्र ना हो कि जो मेरे से गुनाह हो गए तो क्या हो गया, सबसे ही होते हैं तो क्या हो गया फिर क्या हो गया, उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं था तो क्या हो गया, वो तो माफ हो ही गए होंगे, और आइंदा जिंदगी के बारे में तो उसमें तौबा करता रहे और आइंदा जिंदगी के बारे में तकवा इख्तियार करे, और इताअत कुरान और हदीस उसकी जिंदगी हो, उनके उनको ओबे करना उसका मकसद हयात, तब है फाइजून। और हम सोचते हैं हम फाइजून वैसे ही बन गए, फाइजून क्या मतलब, हम मतलब अब देख लेना कि हम अपने आप को सबको समझते हैं कि हम तो कामयाब हैं क्योंकि हम नमाज जो पढ़ लेते हैं, हमने रोजा रख लिया, बस कामयाबी कामयाबी, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हुक्म, बाकी हुक्म भी तो अल्लाह के ही है ना, या नहीं? जो कुरान में बाकी अहकामात है वो भी तो अल्लाह ताला की तरफ से है, या सिर्फ नमाज रोजा है? नमाज रोजा जिसने कर लिया या एक छोटा सा स्काफ सर के ऊपर बांध लिया लपेट लिया तो उसने कहा मैंने तो दीन ही मुकम्मल कर लिया, वो अब तो हमें समझ ही नहीं आती हम करें क्या, सारा कुछ तो हम करते हैं, बहुत हद हो गई तो एक अबाया भी पहन लिया, उसके बाद तो बस औलिया अल्लाह में शामिल होगा। इतना आप अपने आप को समझने लगे, अभी तो पूरा कुरान पढ़ा हुआ है अमल करने के लिए, और बाज लोग तो इतना भी नहीं करते हैं और वो भी अपने आप को कामिल समझेंगे, और हदीस रसूल की बात उसको सर आंखों पे रखना, उसको आगे रखना, किसी जगह पे बहाने नहीं ले आने अपने, और फिर अपनी जिंदगी में पीछे माजी पे भी ऑलवेज उसको याद कर करके तौबा करते रहना, और मुस्तकबिल के बारे में भी हमेशा अल्लाह ताला की नाराजगी से डरते रहना, गुनाहों से बच बच के चलना, अपने आप को जिंदगी में ऐसे बचाना जैसे इंसान इस दुनिया के अंदर कांटों से अपने आप को बचा के चलता है, ऐसे जिंदगी में बच बच के चलना, तब है निजात, तब है इंसान के लिए कामयाबी। वा कसमु बिल्लाह ज्यादा ईमानिहिम, और ये कसमें खाते हैं अल्लाह की, पक्की कसमें, इतनी कसमें खा खा के, हम आपके ताबेदार, हम आपके खिदमत गुजार, हम तो खादिम गुलाम है आपके, जो हुक्म आप करें, ला इन अमरतहुम ला यखरुजुन, हाँ लेकिन अगर आप इनको हुक्म दें किसी चीज का यकीन और जरूर निकलेंगे, कि वो कहते हैं अगर आप हमें हुक्म देंगे हम तो कोई मसला ही नहीं है ये, हम तो जरूर निकलेंगे, पक्की कस्में खा के कहते हैं वो उस वक्त ना, ठीक है वो इतना भी अपने आप के ऊपर जबर करके खुद को मस्जिदों तक तो ले आते थे, चलो यहां तक भी ठीक हो गया, कुछ ना कुछ मारे बांधे का सदका खैरात भी थोड़ा बहुत कर देते थे कि कम नजर आते रहें कि हम ईमान में, लेकिन जिस वक्त अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ता था तो उसमें तो जान का खतरा है, अब वो तो हमसे नहीं ली जाते, यानी सिंसियर नहीं है दीन के साथ, दिल से दीन के साथ नहीं, अपनी सिंसेरिटीज को चेक करना चाहिए, कितने वफादार हैं आप इस दीन के, कितनी गैरत आती है आप उसको इस दीन के लिए, इस पे कोई आंच आ जाए तो आपके लिए वो कितनी बड़ी बात होती, अपनी इज्जत पे आंच आ जाए फिर तो फिर हम लड़ने को खड़े हो जाते हैं, छोड़ते नहीं किसी को, फिर बहुत बुरा मान लेते हैं, सारी जिंदगी बात नहीं करूंगी, लेकिन दीन के ऊपर कोई कुछ भी कहता रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, ना जी दीन के दिफा का कोई समझ है, ना कोई दलील है, ना कोई नॉलेज लिया है, तो वो तो कहते थे आप अगर हुक्म करेंगे तो हम निकल आएंगे, ये कौन सा इतनी मसले की बात है, बस हमने अगली दफा आप देखिएगा फिर हम देखे हम करते क्या है, ये जो बातें बहुत करते हैं ना वो उनके अंदर फिर वो नहीं, वो गरज जो गरजते हैं वो बरसते नहीं वाली बात है, और खाली बर्तन हमेशा ही उसकी आवाज ज्यादा होती है, कुला तुकसिमु कह दीजिए ना तुम कसमें खाओ, कसमों खाने की जरूरत नहीं, तात मारूफ आ, तात मारूफ है, इसके दो माने हैं, एक मतलब तात तो जानी पहचानी, यानी इतात तो वो है जो सहाबा कराम कर रहे हैं, वो तो जानी पहचानी चीज है, वो करके दिखाओ, और दूसरा माना सार्केस्टिक है, तुम्हारी इतात जो तुम कह रहे हो ना कि हम तो ये करेंगे और हम तो इतात कर, बड़ी अच्छी देखी हुई है, जानी पहचानी है, सबको पता है कि तुम कितने इतात गुजार, खबीर बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह ताला खबर रखने वाला उसके जो वो अमल करते हैं, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कितनी दफा आता जा रहा है अतीउल्लाह अतीउर रसूल, यहाँ पे भी देखिए 52 आयत के अंदर मैं होती अल्लाह व रसूल हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया मैं होती रसूल है फकद अता अल्लाह सूरह निसा में, कि जो अल्लाह ताला जो रसूल की इताअत करेगा उसने समझ ले अल्लाह की इताअत की है, रसूल ने वही कहते हैं जो अल्लाह ताला ने फरमाया, रसूल अपनी तरफ से तो नहीं कुछ कहते, ये यकीन होना चाहिए कि रसूल की बात कोई अपनी तरफ से नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से ही बात है, फिर रसूल की बात को इतना बिलिटल क्यों करते हैं, इतना छोटा क्यों समझते हैं, तो क्या हो गया हदीस ही तो है तो क्या हो गया, अच्छा और उसके ऊपर इतनी बातें करना, याद रखिए ये लोग जो मुनकिरीन हदीस है वो रसूल की बात को नहीं मानते, फिर वो कहां से फाइजून में हो जाएंगे, वो तो फेलियर्स हो गए, वो तो कामयाब नहीं हो सकते जिसने हदीस को पीछे कर दिया। असल में ये बहुत बड़ा एक एजेंडा है कि कुरान को चलो पढ़ भी लेंगे ना लोग, कोई बात नहीं, कुरान को समझने के लिए हदीस चाहिए। अगर कुरान को आप हदीस से नहीं समझते ना, तो कुरान से मन माने माने निकाल सकता है कोई इंसान, मन मानी तफसीरें कर सकता है अपनी मर्जी की। अपनी मर्जी की तफसीर करने की रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, वो हदीस है। इसी वजह से ये लोग कहते हैं, नहीं जी हदीस तो लिखी बाद में गई, नहीं तो जी तो हदीस तो प्रिजर्व ही बाद में हुई, नहीं हदीस तो कुछ नहीं है, हदीस को छोड़ो, हदीस की बात नहीं। कुछ अरसा पहले किसी ने मुझे ईमेल लिखी, कोई मर्द ही थे, अल्लाह ताला हिदायत दे उनको, इतना ज्यादा उन्होंने मुझे ये कन्विंस करने की कोशिश की कि आप हदीस को तो छोड़ ही दें, हदीस की बात ना आप किया करें। और बड़ी उसमें तारीफें भी लिखी हुई हैं, आप जैसे स्कॉलर और आप जैसे लोग भी अगर हदीस के ऊपर इस तरह बात करेंगे और हदीस को ऐसे समझेंगे कि जो ना अकल के अंदर समझ आती बात ना साइंस उसको कहती है, तो आपने तो अपनी अकलों को ही झुटला दिया, ये अकल से मावरा बात कैसे हो सकती है हदीस की। तो ऐसी हदीसों को तो आप बिल्कुल खातिर में ही ना लाएं, और आप कैसे ऐसी हदीसों को कोट कर सकती हैं। ये मेरे लिए बहुत सब्र का मामला था, क्योंकि इंसान का खून खौलने लगता है कि मेरे नबी की बात ना मेरे ऊपर सर आंखों पे है, उनकी बात के आगे मेरी अकल क्या चीज है, मेरी समझ क्या चीज है, साइंस क्या चीज है, मेरे लिए कोई कोई चीज नहीं है। हदीस ने अगर ये कह दिया ना कि ऐसा है, तो वो ऐसा ही है, अब चाहे साइंस जो मर्जी बोलती रहे, आई डोंट केयर। आप मुझे अंधा कहो, बहरा कहो, कुछ भी कहो, बेअकल को कहते रहो, हदीस को तो नहीं हम छोड़े। हाँ ये जरूर आप कह सकते हैं कि कई मौजू अहादीस फैब्रिकेटेड अहादीस है, उनका सबको पता है, उनको ना कोट करना चाहिए और सबको पता है कि ये फैब्रिकेट की हुई है, लोगों ने खुद ही बनाई हुई थी। लेकिन आज ये तो नहीं आप कह सकते कि बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी शरीफ और नसाई और ये सारी अहादीस सारी छोड़ दो, क्योंकि ये तो जो जो हाँ अकल पे पूरी उतरती है वो जरूर लो। कहते हैं जो अकल पे पूरी उतरे वो आप लें, लेकिन अगर अकल पे पूरी नहीं उतरती तो फिर आप क्यों उनको कोट करती हैं? तो यानी पहले मैं अपनी अकल देखूं कि मेरी अकल में आ रही है ये बात और ये लॉजिकल लगती है और साइंस ने भी इसको मानना है, तो फिर मैं हदीस को मानूंगी। तो फिर तो मैंने साइंस को मान लिया और अपनी अकल को मान लिया, हदीस को तो मानना ही नहीं। फिर मैंने हदीस को मानना ये होगा कि दुनिया जहान एक बात कह रही है लेकिन हदीस एक बात कहती है, तो मैं हदीस को मानू, तब तो मानना हुआ, वरना तो वही वाली बात है जैसे हमने अभी पढ़ी कि अगर मेरी मर्जी की बात होगी तो मैं अल्लाह रसूल की बात मानूंगी, अगर मेरी मर्जी की बात ना होगी तो मैंने अल्लाह रसूल की बात भी नहीं मानी, तो बात तो फिर मैंने अपनी मर्जी की मानी ना, अल्लाह रसूल की बात तो सेकेंडरी है मेरे लिए, वो मेरी मर्जी के मुताबिक आ गई तो फाइन, वेल एंड गुड, बड़ी खुशी की बात है, फिर तो मैं ऐलान करती उछलती फिरती हूं कि हाँ जी कुरान हदीस ये कहता है, ताकि मेरी बात में जोर आ जाए। और जहां कुरान हदीस की बात मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं, तो कुरान हदीस को ही भूल गए कि वो भी कोई चीज होती थी या कुछ पढ़ा था हमने। तो ऐसे गुमराहकुन लोग आज भी मौजूद हैं, और जाहिर है किसी ने तो मेरा लेक्चर सुना होगा, कहीं पहुंचा होगा, और उसके बाद उन्होंने ये चीज निकाली उसके अंदर से कि आपने ये हदीस क्यों कोट कर दी, क्योंकि तो ये तो अकल के अंदर नहीं आती, साइंस में नहीं आती, तो ना है साइंस में, और वो इस पे तुले हुए थे कि वो कन्विंस करें मुझे। तो ये इन आयात का हम क्या करें, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। फैन तवल्लो, तो अगर तुम मुंह फेरते हो, अल्लाह को कोई परवाह नहीं, तुम सारे भी मुंह फेर लो ना, अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं, फइन्नमा अलैहि मा हुम मिला, तो हमारे रसूल के ऊपर तो वो उठवाया गया जो के उस पर वो है जो वो उठवाया गया, यानी जो जिम्मेदारी उसको दी गई वो है बस उस पर, और उन पे जिम्मेदारी क्या थी कि पैगाम को पहुंचा देना, बस यही है। वमा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, हम भी एंड में कहते हैं ना वमा अलैना इल्लल बलाग, ये आप अक्सर सुनते होंगे कोई स्पीकर बोल रहा था, उसके बाद एंड में वो कहता है वमा अलैना इल्लल बलाग, उसका मतलब क्या होता है कि हमारे जिम्मे सिर्फ पहुंचा देना था, मैंने पहुंचा दी है बात, तो रसूल के जिम्मे क्या है, पहुंचा देना खुल्लम खुल्ला, के कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हमारे रसूल के ऊपर वो है जो वो उठवाया गया, जो उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उनसे तो उसी की पूछ है, वालेकुम मा हुम मिल तुम, और तुम्हारे ऊपर वो है जो तुम उठवाए गए, और तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है कि तुम इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की, तुमसे इसके बारे में पूछा जाएगा। वह इन तुतीउहु तहतदू, अब इसको आप ना हाईलाइट कर लें प्लीज, वह इन तुतीउहु तहतदू, अगर तुम इताअत करोगे उसकी, किसकी किसकी, रसूल की। यहाँ पे अल्लाह ताला की बात नहीं आ रही, जाहिर है रसूल की बात वही है जो अल्लाह की बात है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात आ रही है। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि अगर तुम रसूल की इताअत करोगे तब तुम हिदायत याफ्ता होगे, तब तुम्हें हिदायत मिली। इसका मतलब है कि रसूल की बात जो नहीं मानता वो हिदायत याफ्ता नहीं है। और क्या चीज चाहिए आपको सबूत ये बात समझने के लिए कि जिसने हदीस का इनकार किया या जो हदीस को नहीं मानते वो हिदायत याफ्ता नहीं हो सकते, वो गुमराह लोग हैं और उनके फितनों में नहीं आना। और ऐसे लोग आजकल बहुत फैले हैं और लोगों को कन्विंस करने में बहुत हद तक जाते हैं। आपके पास ऐसी आयतें मौजूद होनी चाहिए, अव्वल तो बहस करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका खुद का दिल तो इस चीज पे कन्विंस्ड हो कि जो रसूल की इताअत करेगा हिदायत याफ्ता बस वो ही है, बाकी सब गुमराही। और रसूल की बात कहां से पता चलेगी, यहीं पे तो बात आती है ना, रसूल की बात कहां से पता चलेगी, इताअत कैसे करेंगे, हदीस से पता चलेगी ना। तो हदीस के इनकारी क्या इस चीज के ऊपर क्या पेश करेंगे, कहां से वो इताअत लेकर आएंगे रसूल की। चलो कुरान पढ़ लिया जी हमने, हम बस कुरान ही कुरान है, बस हदीस तो है ही नहीं, है ही नहीं, उसको तो पीछे ही कर दिया। बस आप कुरान पढ़ें और कुरान से ही करें और आप बाकी किसी चीज को नहीं हमने लाना, कुरान ही है बस। आपने ऐसे कुछ लोगों को कहते थे सुना होगा, तो फिर इस बात का वो क्या जवाब देंगे। और अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे नहीं पता वो जब कुरान पढ़ते हैं तो वो इस चीज की क्या कैसे उसकी तफसीर बयान करते हैं, क्या कहते हैं वो। शायद यही कह देते होंगे कि बस रसूल को मान लो कि वो अल्लाह के नबी हैं बस। तो नबुवत की वजह से उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है ना, वो जिम्मेदारी उनकी यही है कि वो इस दीन इस्लाम को खोल के बयान कर दे। और अगर आपने उनका ही बयान नहीं लेना, उनका बयान करदा वह दीन, बयान करदा दीन नहीं लेना, तो फिर क्या लेना है, हम खुद बयान करेंगे कि दीन क्या है, हम खुद इसको एक्सप्लेन करेंगे और खुद इंटरप्रेट करेंगे। तो वो कौन है जो रसूल से भी ऊपर है कि वो हमें बताएगा कि दीन असल में क्या है और इन चीजों की एक्सप्लेनेशन कैसे होनी चाहिए और कैसे वो कैसे इंटरप्रेट करके बताएगा। वमा आला रसूली इल्ल बलागुल मुबीन, और नहीं है हमारे रसूल के जिम्मे मगर सिर्फ पहुंचा देना है खुल्लम खुल्ला। रसूल का ये जिम्मा नहीं है तुम लोगों को पकड़ पकड़ के जहन्नुम से निकाल निकाल के और बचाए, ना रसूल का ये जिम्मा है कि जबरदस्ती तुम लोगों को हिदायत की गोलियां खिला दे। रसूल का जिम्मा सिर्फ पहुंचा देना खुल्लम खुल्ला, और इसके आगे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तुमने मानना मानो, नहीं मानना ना मानो, ये अल्लाह ताला ने हमें चॉइस दी है, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, चाहे तो शुक्र गुजार बनो चाहे तो कुफर करो, ना शुक्री पे उतर आओ। अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते रख दिए, रसूल की जिम्मेदारी बस इतनी है और इस पे ही खत्म हो जाती है। अब कानों से पकड़ पकड़ के वो किसी को नहीं लेकर आएंगे, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, अल्लाह ताला ने फरमा दिया रसूल को भी, मुदक्किर इन्नमा अंता मुदक्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ए नबी आपका काम बस लोगों को याद दहानी करा देना, बस आप उनके ऊपर कोई दारोगा थोड़ी, और ना हम किसी के ऊपर है कि हम किसी को डंडा पकड़ के तो उनको सीधा करना शुरू कर दे, आपका काम है बस पहुंचा दे। नहीं मानते ना माने, मान गए तो अपना ही भला कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला इस सबक को हमारे अंदर उतार दे और अल्लाह ताला हमारी आंखें खोल दे, अल्लाह ताला हक और बातिल हमें साफ दिखाई देने लगे, और अल्लाह हक की इतिबा की तौफीक दे और बातिल से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें पक्के और सच्चे मोमिन बना दे और सिर्फ बातें करने वाले लोग ना बनाए, कि बातें कयामत के दिन काम नहीं आनी, बातें सिर्फ हमारे खिलाफ ही हुज्जत बनेगी कि बातें तो तुम बहुत करते थे और काम तुम क्या करके लेकर आए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين